थोड़ी देर बाद प्रियल निखिल के लिए खाना लेकर आ गई। उसे नहीं पता था निखिल को क्या पसंद था, इसलिए वो अपनी पसंद का खाना ले आई थी। निखिल लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, प्रियल खाना लेकर आई और उसे बेड पर रख दिया। फिर वो भी अपने बेड पर गई और काम करने लगी, मगर उसने देखा निखिल ने उसके खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सर, मैं खाना ले आई हूँ, प्रियल बोली। मुझे दिखता है, निखिल ने कहा, मगर बिना अपना चेहरा ऊपर उठाए। तो आप? प्रियल बस इतना ही बोली। क्योंकि मुझे नहीं खाना, निखिल ने कहा और लैपटॉप बंद कर अपनी जगह से उठने की तैयारी करने लगा। प्रियल को नहीं समझ आ रहा था वो ऐसा क्यों कह रहा है, मगर निखिल के उसके द्वारा लाए गए खाना ना खाने की वजह से वो अंदर से थोड़ी निराश हो गई थी। निखिल अपने बेड से खड़ा हुआ और फिर प्रियल की तरफ हल्की आंखों से देखते हुए कहा, तुझे पता भी है तूने मुझे जाते वक्त क्या कहा था? अकड़ू, मैं तुझे अकड़ू लगता हूँ। निखिल ने इतना कहा तो प्रियल समझ गई बात क्या है। वो उसके अकड़ू वाले शब्द पर नाराज़गी दिखा रहा था। प्रियल अपने बेड पर खड़ी हुई और तुरंत अपनी गलती मानते हुए बोली, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था, वो मैंने जल्दी में कह दिया था। मेरा काम की तरफ ध्यान था और आप खाना नहीं मंगवा रहे थे, इसी चक्कर में सारा रायता फैल गया, सॉरी। प्रियल ने मासूम से तरीके से सॉरी कहा। रायता? तुम ये अजीब अजीब से शब्द कहाँ से लेकर आ रहे हो? निखिल ने पूछा। सॉरी, प्रियल ने दोबारा से सॉरी कह दिया, जो उसके रायता वाले शब्द के लिए था। प्रियल ने अपनी आंखें मूंदकर चेहरा हल्का सा नीचे कर लिया था, वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। निखिल को उसका ये चेहरा अच्छा लगा, एक पल के लिए वो उसमें खोसा रहा था, मगर अगले ही पल उसने खुद को झकझोरा और होश में आया। ठीक है, आगे से मत करना ऐसा, अगर किया तो देख लेना। प्रियल ने स्कूल के किसी अच्छे बच्चे की तरह सिर हिला दिया। निखिल बेड पर बैठा और खाना खाने लगा, वहीं प्रियल भी अपने बेड पर गई और काम करने लगी। काम करते वक्त उसके चेहरे पर किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। निखिल ने जो काम किया, जिसमें उसने अपनी नाराज़गी दिखाई थी, उसने प्रियल का दिल मोह लिया था। वहीं निखिल भी अंदर से हल्का सा खुश था, उसे प्रियल का सॉरी वाला चेहरा अच्छा लगा था, मगर वो अपनी खुशी को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा था, बाहर से भी और अंदर भी। अगले दिन प्रियल उठी तो उसने देखा निखिल अपने बेड पर उसी पोजीशन में बैठा था जैसे कल रात को था, आखिरी बार उसने उसे बैठे हुए देखा था। इन्होंने क्या पूरी रात काम किया था? एक बार सोने के बाद मेरी तो आंख नहीं खुली जो मैं इसे काम करते हुए देख सकती, प्रियल खुद में सोचते हुए बोली। फिर उसने खुद से ही सवाल किया, मैं इनसे पूछ लूं ये सारी रात काम कर रहा था? नहीं, अगर मैंने पूछा और इसने सवालों की झड़ी लगा दी तो क्या होगा? रहने ही दो। प्रियल इतना कहकर खड़ी हो गई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। प्रियल के जाते ही निखिल ने वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और सोचते हुए कहा, कमाल है, ये लड़की है या कुछ और, न गुड मॉर्निंग न हैव अ नाइस डे, बस सीधी खड़ी हुई और वॉशरूम में चली गई। कुछ तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी इसे, एटलीस्ट मैं इसका सीनियर हूँ। इसके बाद उसने अपना सर झटका और लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, जाने दो, मैं इसकी इतनी क्यों फिक्र कर रहा हूँ, निखिल तुम अपना काम करो ना चुपचाप। प्रियल तकरीबन 30 मिनट बाद वॉशरूम से नहा धोकर बाहर आई। वो पूरी तरह से तैयार होकर ही बाहर आई थी। उसने एक टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, बाल टॉवल में बंधे हुए थे। निखिल ने एक नज़रों से देखा और उसे देखता ही रह गया, मगर अगले ही पल वो तुरंत अपने काम में लग गया। उसे प्रियल को इस तरह से देखना अजीब लगा। प्रियल ने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन दिए और हल्के कॉन्फिडेंस के साथ निखिल को कहा, गुड मॉर्निंग सर। निखिल ने बिना उसकी तरफ देखे उसे जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे अपने ही काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसलिए उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया था, जबकि सच्चाई ये थी कि वो फिर से उसे देखना चाहता था। प्रियल अलमारी की तरफ बढ़ी और वहां कुछ कपड़े सेट करने के बाद निखिल से पूछा, आप सारी रात ऐसे ही काम कर रहे थे क्या? हाँ, निखिल ने जवाब दिया, मुझ पर पूरे इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में कभी कभी कितना काम करना पड़ता है मुझे भी इसका पता नहीं चलता। कई बार तो मैंने दो दो रातों तक जाग कर काम किया है। ओह, प्रियल ने हल्की हैरानी दिखाई, ये तो सच में काफ़ी मुश्किल काम है। फिर इधर उधर देखा और कहा, अच्छा मैं ट्रेनिंग के लिए चलती हूँ, और कहकर बाल सही किए और बाहर चली गई। उसके जाने के बाद निखिल ने अपना चेहरा ऊपर किया और दरवाजे से ही उसे बाहर ग्राउंड में जाते हुए देखा। वहाँ वो आरोही से बात करने लगी थी। निखिल दरवाजे से उसे तब तक देखता रहा जब तक वो दिखती रही। जब वो दिखना बंद हो गई तब उसने अपना ध्यान लैपटॉप की तरफ किया और काम करने लगा। तकरीबन 10 बजे निखिल फ्रेश होकर अपने रूम से निकलकर बाहर आया। वो खुद को कल से बेहतर महसूस कर रहा था, उसका लंगड़ाना कम हो गया था। बाहर आने के बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चला गया। वहां वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखने लगा। सभी स्टूडेंट्स उसे गुड मॉर्निंग सर कह रहे थे और वो सिर हिलाकर उनका जवाब दे रहा था। उसने जीन्स की पैंट, टी शर्ट और उसके ऊपर लेदर की जैकेट पहन रखी थी। दोनों हाथ पैंट की जेब में थे और वो चहलकदमी करता हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड में फिर रहा था। प्रियल एक बड़े से लकड़ी के डंडे को जमीन में गाड़ने में लगी हुई थी। आज की ट्रेनिंग में उसे यही करना था, ऐसे 100 लकड़ी के डंडे जमीन में गाड़ने थे। वो मिट्टी से पूरी तरह तरबतर थी। डंडा काटते काटते उसकी नज़र निखिल पर पड़ी, जो अपने कूल वे वाले अंदाज में उसी की ओर आ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख उसने तुरंत उसे देखना छोड़ा और नीचे की तरफ चेहरा कर अपना काम करने लगी। निखिल उसके पास आया और बोला, तुझे नहीं लगता तुम्हारी एज के हिसाब से ये काम काफी टफ है? एजेंट बनने से पहले तुमने इसके खतरों और इसके लिए की जाने वाली मेहनत के बारे में रिसर्च तो की ही होगी। इतने खतरनाक और मुश्किल कामों को देखकर तुम्हारा एजेंट बनने का मन कैसे कर गया? खतरे तो हर जगह होते हैं। अगर आप सेफ से सेफ काम भी करते हो तो वहाँ भी कोई ना कोई खतरा आ सकता है। फिर आपका ही तो कहना है, खतरे कभी पूछ कर नहीं आते। और ये बात सिर्फ एजेंट के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए लागू होती है। हर एक इंसान के लिए उसकी जिंदगी में खतरे कभी उससे पूछ कर नहीं आते। प्रियल ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया। वो अब निखिल की तरफ देखने में किसी तरह की हिचक नहीं महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी देख लेती थी। इम्प्रेसिव, निखिल ने कंधा उठाते हुए कहा। इसके बाद वो आगे बढ़ा और बड़े से खिले को संभालता हुआ बोला, लो मैं इसमें तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, प्रियल बोली। आपको वैसे भी चोट लगी हुई है, चोट में इस तरह के काम करना ठीक नहीं रहता। ये तुमसे किसने कह दिया? और कमजोर तो तुम भी हो ना, जब तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं, निखिल बोला और खिले को पकड़ लिया। प्रियल ने निखिल की तरफ देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान दी। फिर मुस्कान देने के बाद उसने थैंक्स कहा। इसके बाद दोनों मिलकर जमीन में खिले गाड़ने लगे। दोपहर को तकरीबन 50 के करीब खिले गाड़ने के बाद वो लोग आकर लंच करने लगे। निखिल बेंच पर बैठ गया था जबकि प्रियल उसके लिए खाना लेकर आई थी। निखिल ने खाने की प्लेट की तरफ देखा तो उसे फिर से अपना पसंदीदा खाना मिला। उसने अपना पसंदीदा खाना देखकर प्रियल से पूछा, तुझे मेरी पसंद या नापसंद के बारे में पता है क्या? तुम कल भी मेरे लिए मेरी पसंद का खाना लेकर आई थी, जबकि अब भी नहीं तो? प्रियल ने जवाब दिया, मैं तो जो भी खाना लेकर आई थी वो मैंने अपनी ही पसंद का सिलेक्ट किया था।
यू मीन तुझे भी ये खाना पसंद है? निखिल ने पूछा। हाँ, क्यों, कोई गलत बात है क्या? प्रियल अपनी जगह पर बैठ गई और खाना खाने लगी। उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि निखिल और उसके खाने की पसंद एक जैसी है, जबकि निखिल ने देख लिया था। नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम खाना खाओ, निखिल ने कहकर एक बार प्रियल को खाना खाते हुए देखा और फिर खुद भी खाना खाने लगा। रात के लगभग 8 बजे निखिल एक हल्की वॉक कर अपने कमरे में आया। वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा उसका बिस्तर पूरी तरह से साफ था। बिस्तर पर रखा उसका सामान टेबल पर सजाकर रखा पड़ा था। ये देखते ही वो आग बबूला हो गया। कोई उसकी चीज को हाथ लगाए ये उसे पसंद नहीं था। यहाँ तक कि अगर उसके सामान की हालत खराब हो रही हो तो भी वो उसे किसी और को हाथ लगाने नहीं देता था। प्रियल वॉशरूम में थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई और अपने बिस्तर को सही करने लगी। अपने बिस्तर को सही करते हुए उसने पूछा, सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैंने आपके लैपटॉप पर एक लड़की की तस्वीर देखी थी, वो कौन है? प्रियल ने अपने ध्यान में ही खोकर ये सवाल पूछा था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि निखिल गुस्से में है। वो जो तस्वीर उसके लैपटॉप पर थी वो एली की थी। इस बात ने निखिल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? तुम आखिर समझती क्या हो अपने आप को? निखिल पूरी तरह से उस पर भड़क गया। मैंने सॉफ्ट नेचर में दो बातें कर ली, तुम खुद को इस लायक समझने लगी हूँ कि मेरी चीजों तक पहुंच गई। तुम जैसे लोग डिजर्व ही नहीं करते मेरे सॉफ्ट नेचर को। मगर, प्रियल बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो इस कमरे से, निखिल ने अपना हाथ कर उसे बाहर जाने के लिए कह दिया। प्रियल ने ये सुना तो उसे धक्का सा लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने को हो गए जिन्हें वो जैसे तैसे कर रोकने की कोशिश कर रही थी। निखिल का गुस्सा जोरदार था मगर उसने उसे बहुत सह लिया था, पर उसका कमरे से बाहर जाने के लिए कहना उसकी सहनशीलता से बाहर था। वो तुरंत बाहर की ओर मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। वहां वो जिन आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी वे उसकी आंखों से निकल पड़े और वो वहीं खड़ी होकर रोने लगी। वो रोते हुए वो बुदबुदाई, मगर मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने आपका सामान नहीं छेड़ा।